ये आकाशवाणी है। अब आप जया भारती से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार और बुधवार को 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज रूस के लिए रवाना होंगे। वे ब्रिक्स देशों के नेताओं और अन्य आमंत्रित लोगों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। समूह के 9 सदस्यों तक विस्तार के बाद यह पहला शिखर सम्मेलन है जिसमें मिस्र, ईरान, इथोपिया और संयुक्त अरब अमीरात दक्षिण अफ्रीका में 2023 शिखर सम्मेलन में सदस्यता की पेशकश के बाद इस वर्ष शामिल हो रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी रूस की अध्यक्षता में कजान में आयोजित होने वाले 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर 22 और 23 अक्टूबर को रूस का दौरा करेंगे। कजान में शिखर सम्मेलन का विषय वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना है। ये नेताओं को प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। यह ब्रिक्स द्वारा शुरू की गई पहलों की प्रगति का आकलन करने और भविष्य में सहयोग के लिए संभावित क्षेत्रों की पहचान करने का एक मूल्यवान अवसर प्रदान करेगा। मुख्य ब्रिक्स बैठक के अलावा एशिया, अफ्रीका, मध्य पूर्व और लैटिन अमेरिका के प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए ब्रिक्स एंड द ग्लोबल साउथ बिल्डिंग द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड टुगेदर विषय पर ब्रिक्स प्लस प्रारूप में बैठकें होंगी। जम्मू कश्मीर के गांधरबल जिले में एक निजी कंपनी के श्रमिक शिविर पर कल देर शाम आतंकवादियों ने हमला कर दिया जिसमें 6 गैर कश्मीरी मजदूरों की मौत हो गई और 4 घायल हो गए। घायलों को कंगन शहर के एक उपजिला अस्पताल में ले जाया गया जहां से गंभीर रूप से घायलों को श्रीनगर के SKIMS अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर हुए आतंकी हमले को घृणित और कायरतापूर्ण कृत्य करार दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस जघन्य कृत्य में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और हमारे सुरक्षा बलों से सबसे कठोर प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। श्री शाह ने मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। कश्मीर घाटी में उत्तरी कश्मीर में बारामूला जिले के ओरी इलाके में नियंत्रण रेखा के पास आतंकवादियों से हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने हथियारों से लैस एक आतंकवादी को मार गिराया। मारे गए आतंकवादी की पहचान की जा रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल RJD के बाद अब CPI-MALE ने भी इंडिया ब्लॉक के सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे पर कड़ी नाराजगी जताई है। दोनों दलों ने झामुमो को आज सुबह 11 बजे तक उनकी मांगें पूरी करने का अल्टीमेटम दिया है अन्यथा वे कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। राजद के वरिष्ठ नेता मनोज कुमार झा ने कहा कि 18 से 20 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पार्टी अपने दम पर भाजपा को हराने की क्षमता रखती है। इस तथ्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए था। मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइजू ने अपने देश में भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस शुरू करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रपति कार्यालय ने बताया कि यह निर्णय कैबिनेट के सिफारिश पर लिया गया है। इस कदम से मालदीव की अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण लाभ मिलने की उम्मीद है जिसमें वित्तीय समावेशन में वृद्धि, वित्तीय लेनदेन दक्षता में सुधार और डिजिटल बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है। भारतीय पर्यटक मुद्रा बदलने की परेशानी के बिना UPI सक्षम ऐप्स पर भारतीय रुपए में लेनदेन करने में सक्षम होंगे। इस साल अगस्त में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की यात्रा के दौरान मालदीव में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को लागू करने के लिए दोनों देशों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 32 रन से हराकर महिला T20 विश्व कप का खिताब जीत लिया। न्यूजीलैंड ने पहली बार यह खिताब जीता। यह मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। न्यूजीलैंड के 159 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 126 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका के लिए कप्तान लॉरा वोलवॉक ने सबसे अधिक 23 रन बनाए। न्यूजीलैंड की रोजमेरी मेयर और अल्मेरिया केर ने 3-3 विकेट लिए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।